ये जो मुल्क है इसका पूरा जो सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम वो सूदी मईशत पे बेस करता है, तो कारोबारी होने की हैसियत से मुझे क्या एहतियात करनी है?
सूद खाने से बचना चाहिए, यानी बाकी जितना निज़ाम है उसमें तो आम आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, सूद खाने से बचना चाहिए। और सूद क्या है, जब आप कर्ज पर नफे का मुतालबा करते हैं तो इसको सूद कहते हैं, यानी ये कोई ऐसी पेचीदा चीज़ नहीं है। असल में देखिए बड़ी सादा सी बात है, अगर आप इसको वहाँ से समझ लें तो बहुत सी पेचीदगियाँ हल हो जाती हैं। इस्लाम ये कहता है कि आपके पास अगर कोई जायद रुपया मौजूद है और आपके किसी भाई को मदद की ज़रूरत पड़ गई है तो आप दे दें, यानी हमारी अखलाकियात का आला मेयार यही है। आप नहीं दे रहे तो कर्ज दे दीजिए। अब इस कर्ज पर आप नफे का मुतालबा न कीजिए, क्यों? जब आप काबिल इस्तेमाल चीज़ किसी को देते हैं तो वो उसको इस्तेमाल करेगा, उसका किराया आपको दे देगा, चीज़ आपको वापस कर देगा। लेकिन जब आप रुपए की सूरत में कुछ देते हैं जिसको कंज्यूमेबल कहा जाता है, यानी जो चीज़ें अपने वजूद में फना हो जाती हैं, इस्तेमाल हो जाती हैं, ना कि उस तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं जैसे मैं इस कुर्सी को इस्तेमाल कर रहा हूँ या आप उस मेज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ों में आप वो चीज़ एक मरतबे फना कर बैठते हैं, फिर आपको उसको दोबारा पैदा करना होता है। अगर मिसाल के तौर पर मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए का मकान किराए पर लिया है तो जब आप खाली कराएंगे मैं आपका घर आपके हवाले कर दूँ, लेकिन अगर मैंने आपसे 1 करोड़ रुपया कर्ज ले लिया है तो मैं कहीं खर्च करूँगा ना। आप फ़र्ज कीजिए मैंने किसी कारोबार में लगा दिया, फ़र्ज कर लीजिए मैंने उसे अपनी कोई ज़ाती ज़रूरत पूरी कर दी, तो मुझे मेहनत करके फिर वो रुपया पैदा करना होगा आपको वापस करने के लिए, उस पर नफ़ा जब मांगा जाता है तो इस्लाम इसको अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं समझता। यानी चूँकि कर्ज भी इंसानी ज़िंदगी की एक ज़रूरत है, अब कर्ज पर मनफत का तकाजा ये, इसमें जो आप मनफत ले रहे होते हैं इसको कहते हैं सूद खाना, कुरान मजीद ने इसी को हराम करार दिया है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो ज़िमनी हैं। कुरान मजीद में आप सूरह बकरा के खात्मे में पढ़ लीजिए, वहाँ बड़ी वजाहत के साथ ये बयान किया है कुरान ने कि जो लोग सूद खाते हैं वो किस जुर्म का इरतकाब करते हैं, उनको इससे रुक जाना चाहिए, और वो लोग जो सूद देते हैं यानी सूद पर कर्ज लिया उन्होंने, उनके बारे में आप देखिए तो आपको ही मालूम होगा कि वो गया मजलूम की जगह पर खड़े हैं, उनके बारे में अपील की है कि उनसे ना लिया जाए, और मजीद ये कहा है कि अगर उनमें से कोई तंगदस्त हो फनजरतुन इला मैसरा तो उसको आप खुशहाल होने तक मोहलत दें। तो गोया कर्ज दे के सूद खाने वाले लोग हैं जो वहाँ जेर बहस है, उन्हीं की मजम्मत की गई है, उन्हीं के बारे में ये कहा गया है कि क़यामत में उठेंगे तो इस तरह उठेंगे कि यह तखब्बत हो लें शैतान मिलन बस, गोया शैतान ने अपनी छूत से उनको बाउला कर दिया है। तो ये जितना सारा मामला है सूद का ये असल में इसी से मुतल्लक है, इससे जितना आप बच सकते हैं बचिए, ये कोई लाजिम नहीं है। बाकी रह गई ये बात जो बाज़ लोग कहते हैं कि आप तावुन कर रहे हैं, तो मेरे भाई तावुन तो जिस वक्त मैं अपने 4 रुपए बैंक में रखता हूँ उस वक्त भी कर रहा होता हूँ, बल्कि कर्ज लेने वाले से ज़्यादा कर रहा होता हूँ, इसलिए कि सारा बैंक का निज़ाम ही से चल रहा है। इस वक्त कौन सा मदरसा है, कौन सी मस्जिद है जिसके फंड्स उसी बैंक में मौजूद नहीं है, तो मेरे नज़दीक ये सिस्टम को दुरुस्त करना ये फ़र्द का काम नहीं होता, वो इसके लिए जद्दोजहद कर सकता है, वो इसके लिए आपका साथ दे सकता है, लेकिन उस पर दीन का मिजाज नहीं है कि वो बार डाल दे। उसको इतनी पाबंद किया गया कि आप सूद खाने से इज्तनाब करें, और यहीं तक रहना भी चाहिए। जब आप इस सिस्टम को पाक कर लेंगे, आप सूद खाने सूद खिलाने सारे मामलात को ख़त्म कर लेंगे, उस वक्त तक बाकी बातें मौखर रखिए, वो बातें उसके बाद हो सकेंगी। इतनी बात काफ़ी है कि आपको कर्ज़ लेना भी पड़ता है, आपकी हुकूमतों को कर्ज़ लेने पड़ते हैं, आपका पूरा सिस्टम इस वक्त कर्ज पर चल रहा है, आपकी यूनिवर्सिटियाँ इस पर चल रही हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है मुझे ये बताइए जो अपना एंडोमेंट फंड नहीं कायम किए हुए, तो आपके तमाम इदारे इसी के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ आप आम आदमी को किसी सूली पर नहीं चढ़ा सकते, वो अपना काम करे, अल्लाह ताला उसके काम को जब उसका काम जायज़ है तो कबूल फरमाएगा, उसको देना भी पड़ जाता है, और ज़ाहिर कारोबारी लोगों को तो बारह अपने मंसूबों के लिए देना पड़ता है। आप ये भी नहीं कर सकते कि बड़े मंसूबे ना लगाएं, बड़े मंसूबों ही से मईशत चलती है, या तो आप फिर कोई और निज़ाम लाएं, जब तक बड़ी तहकीकात नहीं होंगी, बड़े मंसूबे नहीं लगेंगे, बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, रोज़गार के मौके कहाँ से पैदा होंगे। तो इसलिए इनमें से किसी चीज़ में भी अल्लाह ताला ने सख्ती नहीं बरती, अलबत्ता सूद खाने से इज्तनाब करना चाहिए।
जावेद साहब, आपने फरमाया सूद खाने से मुतालिक ही सिर्फ बात हुई है, रिवायत में आता है सूद खाने वाला और खिलाने वाला दोनों के लिए वईद आपने बताई है, खाने
मैंने अपनी किताब मीज़ान में भी और अपनी किताब मकामात में भी इस रवायत के बारे में बड़ी वजाहत से बयान कर दिया है कि इसका तर्जुमा करने में बड़ी गलती हुई है। इसमें जो खिलाने वाले हैं वो असल में सूदी कारोबार करने वाले के लिए असामियाँ ढूंढ के लाने वाले एजेंट हैं। आपके इलम में होना चाहिए कि जो महाजनी सूद होता था, यूजरी जिसको कहते हैं, اس میں مہاجن حضرات ایسے ہی کاروبار کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے، انہوں نے آدمی رکھے ہوتے تھے جو جا کے ان کے لیے اسامیاں ڈھونڈتے بھی تھے اور پھر اس کے بعد وصولی کے لیے بھی گھروں میں جاتے تھے۔ میں تو جس علاقے میں رہتا ہوں چینیوں کے یہاں یہ بہت کاروبار ہوتا ہے، تو روزانہ دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا حوادث پیش آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو وہاں پر کھلانے والے کہا گیا، گویا وہ معاون ہو رہے ہیں، جا کے اسامیوں سے سودی رقم لاتے ہیں اور لا کے اپنے سیٹھ صاحب کو دیتے ہیں۔